پھر چلتے پھرتے یوگ نہیں لگے گا. کہیں گے کہ ہم دیدی کے پاس جا کر یوگ میں بیٹھیں گے, ہم دادی کے پاس بیٹھیں گے. باپ تو کہتے چلتے پھرتے باپ کے ورثے کو یاد کرو بس. گیتا سنانے والے ایسے نہیں کہہ سکتے. کیسے تو چلتے پھرتے کرم کرتے باپ کی یاد میں رہو, یہ تو باپ ہی کہتے ہیں. کیا بات کہ چلتے پھرتے کرم کرتے باپ کی یاد میں رہو اور ماں میں کب یاد کرو. تو سادھو سنیاسی کیوں نہیں کہتے ماں میں کب یاد کرو؟ وہ خود ہی برہم تتو کو یاد کرتے ہیں. سرگ کا بھی تم نے ساکشاتکار کیا ہے, بابا بھی جاگتی ساکشاتکار کراتے نہیں ہیں. نہیں تو نئے لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی جادو ہے. گیت تھا مما کی مہما کا. مما تو یہ بھی ہے. کون واسطو میں مما ہے؟ کون جو دھارناؤں کا راجا راجا ہے. کون ہوئی؟ برہما بھی ہے پرنتو ماتاؤں کو سنبھالنے کے لیے جگدمبا مقرر ہے. وہ تو پرستن ہے, ماتاؤں کو سنبھال نہیں سکتا. ڈراما میں دودھ ہے, سبھی سے تیکھی بھی ہے. کون کون مما؟ اوم رادے سبھی سے تیکھی بھی ہے, ان کی مرلی بڑی رسیلی ہے. ان کی کہہ کے دور کیوں کر دیا؟ تو تھوڑے ہی یہ تو وانی تب چلی جب مما نے شریف چھوڑ دیا تھا. ان کی مرلی بڑی رسیلی ہے, تم بچے جانتے ہو یہ شری کرشن پرنس سے اب بیگر بن گئے. کون شری کرشن؟ پہلے پرنس تھے, پرنس سے بیگر بن گئے ہیں. شری کرشن کو چتر کو دیکھا, بتاؤ تم نے کیا کرم کیے جو سورگ کا پرنس بنے ہو؟ بابا نے شری کرشن کا چتر دیکھا اور دیکھ کر کے کیا بولا؟ بتاؤ شری کرشن تم نے کیا کرم کیے جو سورگ کا پرنس بنے ہو؟ ضرور آگے جنم میں راج اسی کا ہوگا. آگے جنم میں من, آگے جنم میں من کب؟ آگے میں سیکھا ہوگا. ہاں ضرور آگے جنم میں, جس سمے مرلی چلا رہی ہے اس سمے آگے کون سا ہوا؟ جب سیکھا ہوگا انہوں نے یوگ. پچھلے کل کی بات ہے, یہاں کلب کی تو باتیں آگے جنم کی بات بولی. آگے کلب کی بات تھوڑے. سنگمی کے آدمی سیکھا, اس سمے راجیو سکھایا جا رہا تھا, پورا پریچے بھی تھا باپ کا. اس سمے راجیوگ سکھانے کے لیے پورا باپ کا پریچے تھا. جان دینے بات الگ, سکھایا راجیوگ سکھایا. ہاں ضرور آگے جنم میں راجیوگ سیکھا ہوگا. جو بیگر کا چتر بنایا ہوا ہے, بیگر ٹو پرنس, وہ کس سمے کا چتر ہے؟ بیگر کب اور پرنس کب؟ ہاں سنگم یوگ میں کس سمے بیگر؟ ضرور کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہوگا نا کہ برہما کی سول سری چھوڑ کر کے کوئی براہمن بچے میں پرویش کر کے بیگری پارٹ بجاتی ہے. بیگر کی پریبھاشا دی, بیگر کے پاس تو پھر دھن پد مان مرتبہ کچھ بھی نہ ہو. تو ضرور آگے جنم میں راجیوگ سیکھا ہوگا, ضرور باپ ہی سورگ کا کہتا ہے, اس نے ہی سکھایا ہوگا. اچھا میٹھی میٹھی سکیل دے بچوں پرتی مات کے کا باپ دادا کا یاد پیار. گڈ مارننگ. روحانی باپ کی روحانی بچوں کے
6-7 हेडिंग यह है मीठे बच्चे माया के प्रभाव से बचने के लिए तो घड़ी घड़ी अपने शक्ति प्रीतम की याद करो, क्योंकि प्रीतम अभी आया हुआ है। तुम सब प्रियतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चलने के लिए। मीठे बच्चे किसने कहा और किसको कहा? शिव बाबा ने कहा। किसको कहा? बच्चों को कहा। शिव बाबा, शिव माने क्या और बाबा माने क्या? बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है, सब जानते हैं। और शिव कहा जाता है ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल को, जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, जो अभोक्ता है, जो अकर्ता है, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म कहा जाता है। वो शिव है, वो शिव अब इस सृष्टि पर आया हुआ है। क्या पहले नहीं था? अगर पहले होता तो दुनिया होती है सदगति होती, क्या होती? जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी मौजूद हो, राजाओं का राजा बनाने वाला, सम्राटों का सम्राट मौजूद हो, वहाँ अव्यवस्था कैसे हो सकती है? वो तो आता ही है कभी भी नरक की दुनिया को बदल करके स्वर्ग बनाने के लिए। कलह युग को कलह कलेश का युग नरक कहा जाता है और सत्य युग को सत्य का युग स्वर्ग कहा जाता है। ये सृष्टि 4 युगों से, इसकी तुलना है नाटक से। ये सृष्टि रूपी रंगमंच है, इसके 4 सीन हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और 4 सीन में जिसे कल्प कहा जाता है, जिसके लिए कहा गया है शास्त्रों में कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, हर कल्प में प्रभु भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, अवतार लेते हैं, सृष्टि का उद्धार करते हैं, सभी आत्मों का उद्धार करते हैं, सर्व का सदगति दाता राम कहा जाता है। तो वो निराकार परम ब्रह्म परमात्मा इस सृष्टि पर अभी आया हुआ है। कोई कहे पहले क्यों नहीं आया या पहले से क्यों नहीं था, तो उसका तो जवाब दिया, अगर पहले से होता तो सबकी सदगति होनी चाहिए, अभी तो सब दुर्गति में पड़े हुए हैं। कोई तन से सुखी नहीं है, कोई धन से सुखी नहीं है, कोई मन से सुखी नहीं है, कोई ताल ठोक के नहीं कह सकता, छाती ठोक के नहीं कह सकता कि मैं तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों से सुखी हूँ या सुखी रहा हूँ या सुखी रहूंगा। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है दुनिया की, तब ही इस सृष्टि पर वो परम पिता परमात्मा शिव, जो बिंदु 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 स्टार स्टार आत्माओं का बाप है, स्टार कहते भी है, प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा, जिस सितारे की यादगार में हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, जरूर आत्मा वहाँ टिकी हुई है, इसलिए मनीषियों ने, विद्वान आचार्यों ने टीका लगाने की परंपरा चलाई। लेकिन वो तो मनुष्य मत में, मनुष्यों की मत में और ईश्वर की मत में अंतर होता है। ईश्वर आकर के जो बात बताएगा वो मनुष्यों की बुद्धि में अगर समाई हुई होती तो इस सृष्टि में परमात्मा को आने की दरकार नहीं। तो मनुष्यों ने तो टीका बिंदी लगाने की परंपरा चलाई, मनुष्य गुरु है। लेकिन गुरुओं का भी गुरु है वो सदगुरु, वो आके बताता है बच्चे टीका या बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है, क्या करने की जरूरत है, स्मृति में रहो कि तुम एक स्टार आत्मा हो, ज्योति बिंदु आत्मा हो। ज्योति बिंदु आत्मा को अपने दो नयनों के बीच में, भ्रगुटे के मध्य में सदैव देखने की कोशिश करो। गीता में भी लिखा है भ्रमोर मध्य प्राण महावेश सम्यक, मनुष्य जब शरीर छोड़े तो भ्रकुटी के मध्य में आत्मा को देखने की कोशिश करे, क्योंकि जो जहाँ का रहने वाला होता है वो वहाँ जल्दी ढूंढने से मिल सकता है। तो आत्मा का इस शरीर में घर ही है उत्तम अंग, इस शरीर में उत्तम से उत्तम अंग कौन सा है? मस्तक। तो मस्तक में आत्मा निवास करती है। कोई को इंदिरा गांधी को 27 गोलियां दाग दी, फिर भी वो जीने की संभावना उनकी बनी रही। अगर मारने वाला जानता होता कि भ्रकुटि के मध्य में आत्मा बैठी हुई होती है तो कहां एक गोली दाग देता, एक गोली में ही कल्याण हो जाता, लेकिन उसे तो बेचारे को पता नहीं था। आत्मा भ्रकुटि के मध्य में रहती है, उन जो आत्माएं अपने अपने शरीर में भ्रकुटि के मध्य में निवास कर रही है, उन सब आत्माओं को वो सुप्रीम सोल आकर के कहता है मीठे मीठे बच्चे। कैसे बच्चे? जो आत्मिक स्मृति में टिकने में होशियार है, जिन्होंने ये प्रैक्टिस की है। क्या प्रैक्टिस की है? तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, और जिससे बात करें उसको भी किस रूप में देखें? आत्मिक रूप में देखें कि हम इसे ज्योति बिंदु आत्मा से बात कर रहे हैं, ये मिट्टी के पुतले से बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी जिनकी पक्की धारणा है, ऐसे ऐसे मीठे मीठे बच्चों से, मीठे मीठे माना रूहानी, जिस्मानियत के नशे में टिकने वाले नहीं, कैसे रूहानियत के रूह की स्टेज में टिकने वाले बच्चों से पाप बात करते मीठे मीठे बच्चे। क्या माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सत्य प्रियतम को याद करो? काय के प्रभाव से बचने के लिए माया क्या चीज है? एक तो राम कहा जाता है भगवान को, और उसके अपोजिट में ये समझा जाता है कि माया बड़ी प्रबल है जो भगवान का भी अपोजिशन करती है, बच्चों को तो तंग करती ही है। तो ये माया रावण कौन है? माया क्या चीज है? माया कोई अलग से कोई आदमी नहीं है। माया अपने अंदर आत्मा के अंदर जो कमजोरियां भर जाती है जन्म मरण के चक्र में आते आते, आसुरी मनुष्यों के संग में आते आते, दूसरी कमजोर आत्माओं के संग का रंग लगते लगते, वो कमजोरी का नाम है माया। क्या मां माने संस्कृत में होता है? ना, नहीं। मां माने नहीं, निगेटिव। और आया ना आया होता, माया माने ना आई होती तो अच्छा था, लेकिन सत्य का रंग तो दुनिया में सबको लगता है, एक सुप्रीम सोल को छोड़ के। ऐसी सृष्टि में ऐसा इस दुनिया में कोई है जो संग के रंग में तो आए, लोगों को उसको संग का रंग लगे नहीं? मां निर्लेप कोई है? वो गुरु लोग तो ऐसे ही कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, लेकिन क्या आत्मा निर्लेप है? आत्मा को लेपक्षेप नहीं लगता? आत्मा को दुख सुख का बंधन नहीं लगता? आत्मा को पाप पुण्य का बंधन नहीं लगता? आत्मा अगर निर्लेप है तब तो परमात्मा जैसी स्थिति होनी चाहिए। जैसे परमात्मा इस नरक की दुनिया में आता है, बच्चों से मिलता है, जुलता है, जो गायन है शास्त्रों में, तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग श्वासों श्वास श्वास निभाऊं, ऐसा परमात्मा जब ऐसे कमजोर बच्चों के संपर्क संबंध में आएगा तो क्या उसको लेपक्षेप लगेगा? उसको नहीं लगता। तो वास्तव में परमात्मा का ये टाइटल है निर्लेप, लेपक्षेप जिसको पाप पुण्य का नहीं लगता। इसलिए पाप आत्मा पुण्यात्मा आत्माओं के लिए कहा जाता है। ऐसे क्यों कहा जाता है? पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा कहा जाता है? नहीं कहा जाता। पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा ऐसे तो कहा ही नहीं जाता। महात्मा परमात्मा ऐसे तो कहा ही नहीं जाता। आत्मा महात्मा बनती है, आत्मा पापात्मा बनती है, आत्मा पुण्यात्मा बनती है, परमात्मा के ऊपर तो पाप पुण्य का लेपक्षेप लगता ही नहीं। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो इस तरह मनुष्य तन में प्रवेश करता है कि किसी का लेपक्षेप उसको न लगे। भूत प्रेत भी प्रवेश करते हैं, लेकिन भूत प्रेत जिसमें प्रवेश करते हैं उसके संग का रंग उनको भी लगता है। जिस रथ में भी प्रवेश करेंगे उनको लगेगा, लेकिन परमात्मा को संग का रंग नहीं लग सकता। अगर उसको भी संग का रंग लग जाए तो वो भी इस दुनिया में आकर के मटमैला हो जाए। तो वो आकर के माया से अपोजिशन बच्चों को करना सिखाता है कि तुम्हारे अंदर जो अनेक जन्म की कमजोरियां आ गई हैं, वो अनेकों का संग करते करते आ गई। संघ का रंग लग गया है। देखो पहले दुनिया में कितने धर्म थे, एकदम शुरुआत में अनेक धर्म होंगे या एक ही धर्म होगा, एक धर्म था। पहले दुनिया में कितनी जातियां होंगी, एक ही जाति होगी। पहले दुनिया में ये जो जितने इतने ढेर सारे धर्म खंड पहले हुए हैं इतने नहीं थे, ये 2500 वर्ष से ढेर सारे धर्म ढेर सारे राज्य पैदा हो गए। शास्त्रों में भी लिखा है सत्युग में नारायण का राज्य था, एकदम सत्युवादी। तो नारायण का जो राज्य था वो राज्य ही वास्तव में नर से नारायण जो बना था। गीता में किसको ज्ञान दिया गया, गीता में ज्ञान दिया गया है नर अर्जुन को। क्या लक्ष्य देकर के ज्ञान दिया गया, हे नर अर्जुन तू ऐसा करनी कर, ऐसी करनी कर, मैं कर्म कर्म गति की जो गति बता रहा हूँ तेरे को गीता ज्ञान में, तू ऐसी करनी कर जो तू नर से नारायण बन, और हे द्रौपदी तू नारी से लक्ष्मी बन। तो जो गीता का ज्ञान महाभारी महाभारत युद्ध से पहले सिखाया परमात्मा ने, वो सिखाया इसलिए था, वो महाभारी महाभारत युद्ध समूल क्रांति कराई इसीलिए थी कि संपूर्ण क्रांति के बाद संपूर्ण शांति संसार में हो जाए। लेकिन मनुष्य गुरुओं ने घपला कर दिया, क्या घपला कर दिया, उन्होंने महाभारत युद्ध को द्वापर के अंत में डाल दिया। अब द्वापर के अंत में अगर भगवान आएगा तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करेगा, तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ। तो मनुष्यों की बुद्धि तो विकारी है, विकारी बुद्धि से उन्होंने शास्त्र लिखे। शास्त्रों में शुरुआत में फिर भी सच्चाई थी, जिन कवियों ने शास्त्र के स्टेज में वो कविताएं रची थी, जो श्लोक रचे थे वो सच्चे थे। बाद में मनुष्य गुरुओं ने उनमें इंटरप्रिटेशन अपने अपने मन के व्याख्याएं डालना शुरू कर दी और अभी शास्त्रों का हालत खराब हो गई। तुंडे तुंडे मते भजना किस एक ही संस्कृत की गीता और उसकी 108 टीकाएं, उससे भी ज्यादा तो हो गई। टैगोर गीता अलग है, गांधी गीता अलग है, माध्वाचार्य गीता अलग है, शंकराचार्य गीता अलग है, और एक एक गीता की दूसरी गीता से जब तुलना की जाए तो व्याख्या में एकदम त्रास। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्मा है लेकिन परमात्मा उन सबसे अलग है। शंकराचार्य की गीता कहती है एक ब्रह्म दूसरी होना, आत्मा अनेक नहीं है, एक ही परमात्मा है, परम ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है, आत्माएं अलग अलग नहीं है, सभी आत्माएं एक ही परम ब्रह्म परमात्मा में समाई हुई है। अहम ब्रह्म अहम शिवो अहम, तो ऐसी ऐसी बातें शंकराचार्य ने की, तो एकदम क्रास हो जाता है। जहां भूल में ही इतना क्रास हो जाता है तो वहां विस्तार में कितना क्रास होगा। तो सच्चाई क्या है, ये कहावत है कह समझे कवि कह समझे रवि। या तो ज्ञान सूर्य कवि जो परमात्मा है, सबसे बड़ा कवियों का कवि, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु, सबसे बड़ा गुरु, वो इस सृष्टि पर उतर आता है। तो जो आज में कवियों ने जो रचना रची थी शास्त्र के स्टेज में, उस शास्त्र के स्टेज की रची हुई कविता का अर्थ सही बताता है, शास्त्रों का सार बताता है। वो कवि तो कविता करके चले गए, उसके बाद जो परवर्ती मनुष्य हुए मनुष्य गुरु, उन्होंने उनका इंटरप्रिटेशन में अपनी मनमानी की। दिन प्रतिदिन मनुष्य विकारी बनता गया, विकारी बुद्धि से विकारी शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन किया, इसलिए शास्त्र तो सब चौपट हो गए। थोड़े बहुत रहे भी तो मुसलमानों ने आकर के, क्रिश्चियंस ने आकर के, उन्होंने उसमें मिस्चैरिटी कर दी अपने तरीके से, उसमें मिस्चैरिटी करके उन्होंने अचंभव तैयार कर दिए। अरे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि महाभारत युद्ध में अग्नियास्त्र थे। अभी कौन से अग्नियास्त्र थे, राम ने कौन से बाण चलाए थे, लोहे के बाण चलाए थे या ज्ञान के बाण चलाए थे, ज्ञान के बम फोड़े थे या ये जो ये क्या नाम भंडार है जो निकाला हुआ है यूरेनियम का, उससे बनाए हुए थे दुनिया का नाश करने के लिए नहीं। परमात्मा तो आकर के सब बेहद की बात है, बेहद का ज्ञान सुनाता है, बेहद के ज्ञान से आत्माओं का कल्याण करता है। आत्माएं जो है वो अपनी मनमानी करके शास्त्रों के अर्थ करके खुद गड्ढे में जाती है, दूसरों को ले जाती है। तो परमात्मा अभी सृष्टि पर आया हुआ है, कहता मीठे मीठे बच्चे माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम क्या करो। माया माना माने अर्थ समझ लिया ना, माँ आया, माँ माने नहीं, आया माने आया, ना आया होता तो अच्छा होता, माना हमारे अंदर जो कमजोरी आ गई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, इन पांच विकारों की जो कमजोरी है वो हमारे अंदर ना आई होती तो अच्छा था। कोई कहेगा कि परमात्मा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होता है, परमात्मा में होता ही नहीं, उसको संकर्म ही नहीं लगता, वो तो निर्लेप है, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म निरंजन कहा जाता है, उसको काजल कैसे लग सकता है। तो वो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के बच्चों को कह रहा है मीठे मीठे बच्चे, तो परमात्मा ने आकर के परिचय दिया कि तुम बच्चे, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, अपन को क्या समझो, आप समझो, आपसे छत कितना, आपसे 65 साल पहले दुनिया में जब एटमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था, दुनिया में जब ढेर के ढेर भगवान का नाम निशान नहीं था, ये 65 साल के अंदर ढेर के ढेर भगवान निकल पड़े और एटमिक एनर्जी भी निकल पड़ी। इससे ये साबित होता है कि भगवान तो जरूर एक ही होना चाहिए, अनेक तो थोड़ा ही होना चाहिए, कि एक होना चाहिए अनेक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तो इसका मतलब उनमें एक कोई जरूर सच्चा है जो 65 वर्ष के अंदर आया हुआ है और बाकी सब झूठे। एक सदगुरु निराकार गाया जाता है तो बाकी गुरु कैसे हो गए, जब एक सदगुरु निराकार है तो बाकी गुरु तो साकारी जितने भी हुए मनुष्य गुरु वो सब सप्त सप्त गुरु नहीं हुए ना, सप्त गुरु सदगुरु एक है तो बाकी गुरु झूठे हो गए। तो बाकी जो गुरु झूठे हैं उनमें पता कैसे चले कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो ये टाइम से मीजान लगाया जा सकता है कि आपसे 62 वर्ष पहले एटमिक एनर्जी भी नहीं थी और ढेर के ढेर गुरु भी नहीं थे, तो उस पीरियड में ऐसा क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्या ऐसी हिस्ट्री है जहां से ये कार्य शुरू हुआ, क्या कार्य शुरू हुआ। परमात्मा आता है तो ऐसे थोड़े कि नई दुनिया बन के चला जाएगा, नए धर्म की धारणा स्थापन करके चला जाएगा, जैसे और धर्म पिताओं ने किया, और धर्म पिताओं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक ने क्या किया, अपने अपने धर्म की धारणा स्थापन करके चले गए बुद्धि में, मनुष्यों की बुद्धि में अपने अपने धर्म की धारणा स्थापन कर दी, लेकिन पुरानी परंपराओं का नाश किसी ने नहीं किया। पुरानी जो परंपराएं चल रही थी, रूढ़ियां चल रही थी, अंधविश्वास चल रहे थे, उनके ऊपर कुठाराघात किसी ने करने का साहस नहीं किया, तो पुरानापन भी दुनिया में चलता रहा और नए नए धर्म की धारणाएं भी अमुक अमुक धर्म खंडों में स्थापन हो, जैसे गुरुनाथ ने पंजाब में आकर के विशेष कार्य संपन्न किया तो वहां सिख धर्म स्थापन हो, महात्मा बुद्ध ने जापान चीन मलाया पूर्वी द्वीप समूह वर्मा ये जितने पूर्वी देश है पूर्व बौद्ध धर्मखंड स्थापन कर दिया तिब्बत तक, तो बौद्ध धर्मखंड हुआ। क्राइस्ट आए उन्होंने यूरोपीय देशों में अमेरिका में क्रिश्चियन धर्मखंड हो गई, तो जो भी धर्म पिताएं आए उन्होंने स्थान स्थान पर कुछ विशेष मरम्मत कर दी सृष्टि की, लेकिन नई सृष्टि किसी ने नहीं रखी, दुख दुनिया में फिर भी बढ़ते चले गए, तो फिर उनको भगवान का रूप कहेंगे, भगवान का कार्य कहेंगे या सिर्फ मनुष्यों का कार्य कहेंगे, वो तो मनुष्यों का कार्य है, भगवान बाप जो इस सृष्टि का पिता है सर्वोपरि वो तो जरूर आकर के नया मकान बनाएगा बच्चों के लिए और आएगा भी सबसे अंत में। जब जितनी भी ये मनुष्य आत्माएं हैं सब अपने अपने कर्म में करके दिखा दें और नीचे गिरती चली जाए, जब सृष्टि नीचे गिरती चली जाए, गिरते गिरते दुनिया में दुख अशांति बढ़ती चली जाए, किसी के बस का रोग न रहे, तब अंत में परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और आकर के आमूल चूल परिवर्तन करता है सारी सृष्टि में, समूल क्रांति करता है। उसके लिए पहले पहला कार्य करता है शंकर के द्वारा क्या, पुराने पन का विनाश, झाड़ू लगाना, पुरानी चीज को नाश करना, विष का भरा हुआ घड़ा रखा हो और उसमें तुम लोटा दो लोटा चार लोटा दूध डाल दो, अच्छा एक घड़ा ही दूध डाल दो तो विष का विष ही रहेगा या दूध हो जाएगा, क्या रहेगा, विष ही रहेगा ना। तो ऐसे और धर्म पिताएं जो भी आते गए उन्होंने अपनी सत्य धारणाएं जो है अपने धर्म की मनुष्यों के अंदर डाल दी, अमुक अमुक मनुष्यों में अमुक अमुक धर्मखंडों में, उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। परमात्मा बाप आता है है तो पहले आकर के शंकर के द्वारा तीन देवताओं का निर्माण करता है, इसलिए कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंची से ऊंची स्टेज वाले देवताओं का नाम है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की रचना स्थापना कराता है, ये कार्य गुप्त रूप में चलता है। जैसे गर्भ में बच्चा गुप्त रूप में स्थापन किया जाता है, दुनिया को कुछ पता ही नहीं, मोहल्ले वालों को पता ही नहीं, घर वाले बच्चों को कुछ पता ही नहीं, माँ जाने बाप जाने और कोई जान ही नहीं सकता कि बच्चा घर में आ चुका है। इसी तरीके से वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर जब आता है, आकर के सबसे पहले एक कार्य करता है, क्या कार्य करता है, बीज बोता है ज्ञान का। तो ज्ञान का बीज उसने आकर के बोया, किसके द्वारा बोया, ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, ब्रह्मा माने बड़ी से बड़ी माँ सृष्टि की। लौकिक में भी जब बच्चों की पैदाइश होती है, सृष्टि प्रक्रिया चलती है, तो पहले बच्चे माँ के संपर्क में आते हैं या बाप के संपर्क में आते हैं, पहले पालना किसकी लेते हैं, माँ की पालना लेते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो पहले पहले ब्रह्मा की रचना करता है और ब्रह्मा में प्रवेश करके वो सब बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। उस ब्रह्मा रूपी माँ में बीज डालने वाला तो कोई होगा कि ऐसे ही माँ से बच्चे पैदा हो जाएंगे, वो बाप पुत्र रहता है। जैसे छोटे बच्चे उनसे पूछो तुम्हारा बाप कौन है, तो माँ की पालना ले रहे हैं, माँ को सब कुछ जबर रहे हैं, माँ जब तक उनको ना बनाइए तुम्हारा पापा है, तब तक उनको कैसे पता चलेगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा की सूल निमित्त बन जाती है नई सृष्टि रचने के, लेकिन ब्रह्मा की भारतीय शास्त्रों में पूजा नहीं होती, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते। कारण कारण क्या, तीन देवताओं में है तो वो भी श्रेष्ठ देवता। कारण यह है कि माँ अति प्यार देने वाली होती, परमात्मा ने भी ब्रह्मा के तन में आकर इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जो सृष्टि रची, जो सारे वर्ल्ड में फैल गई है, दुनिया के सभी देशों में ब्रह्मा कुमारी आश्रम खुले हुए, वो ब्राह्मण तैयार हो चुके हैं, लेकिन उन ब्राह्मणों में दो प्रकार के हो जाते हैं। जैसे कोई माँ बाप के दो तरह के बच्चे होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे स्वभाव संस्कार वाले। एक माँ बाप को बिच्छू टिंडे बनकर दुख देते हैं, कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो सुख देने वाला होता है। तो ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची, कहते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो वो तो ऐसा समझ लेते हैं शास्त्रकार कि ब्रह्मा के मुख में कोई मशीन रखी होगी, वाह किया और ब्राह्मण निकल पड़े। और ऐसे कहीं होता है क्या, अरे परमात्मा निराकार सुप्रीम सोल ने आकर के सृष्टि पर किसी व्यक्ति ने प्रवेश किया, प्रवेश करके उसका नाम ब्रह्मा दिया, और ब्रह्मा के मुख से जिन जिन ने ज्ञान सुना अपने जीवन में धारण किया वो ब्राह्मण कहे। उन ब्राह्मणों में दो तरह के हो गए, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे भी ब्राह्मण पैदा हुए और वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी पैदा हुए। सारथी थे, दूसरों को सुख देने वाले थे, वो कहे गए मुखवंशावली ब्राह्मण। उन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को धारण किया, क्योंकि ब्रह्मा का मुख जो है वो तो हमारी तुम्हारी तरह इस दुनिया का कोई चोला ही होता है, इस पुरानी सृष्टि का कोई मनुष्य ही होता है। उस ब्रह्मा में परमात्मा से जो प्रवेश तो करते हैं, लेकिन प्रवेश करने का है बावजूद भी पार्ट उनका माँ का चलता है, बाप का नहीं चलता। माँ प्यार देती है, माँ बच्चों को जन्म देती है, एक बहुत भारी संस्था का रूप बन गया, लेकिन माँ बच्चों के प्रभाव से प्रभावित हो जाती है। जब बाप गुप्त हो जाता है तब, तो यही हालत हुई ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में भी। ब्रह्मा ने 69 में शरीर छोड़ा, तो जब शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा ने, तो वही सोल जो है वो फिर उस बच्चे को, क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद तो जितनी भी प्रेत आत्माएं होती हैं वो ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है, उनको भूत वर्तमान और भविष्य की ज्यादा जानकारी हो जाती है साकार रूप धारण करने वाली आत्माओं के मुकाबले। तो वो सुप्रीम सोल जिसने ब्रह्मा में प्रवेश करके ये सारी मुरलियां चलाई है माउंट आबू से, जो आपके सामने ये पढ़ी गई, ये मुरलियाँ तो ब्रह्मा की मुख से चलाई गई, ज्ञान का दूध बच्चों को मिला, लेकिन वो ज्ञान का दूध बच्चों को जो मिला है वो माँ के द्वारा इंटरप्रिटेशन उसका मिला। जो माँ के ऊपर भी अथॉरिटी रखने वाला बाप है वो गुजरा छोटे छोटे बच्चों के बुद्धि के सामने। अब वही माँ ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करके जब प्रैक्टिकली ऐसी एक्ट करे और बच्चों को संदेश दे क्या कि ये तुम्हारा बाप है, तब वो आदि देव जो सृष्टि का पहला पहला देवता है, तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, वो सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। पहले प्रत्यक्ष नहीं होता, माँ को ही बच्चे सब कुछ समझते हैं, माँ ही बच्चों का भाई बाप है, लेकिन वही माँ जब बच्चों को परिचय देती है ये तुम्हारा बाप है, प्रैक्टिकल एक्ट के द्वारा परिचय देती है, बच्चे भी निश्चय लिख करके दे देते हैं कि हाँ ये हमारा बाप है, ये हमारी माँ है। वही ब्रह्मा दादा लेखराज की सोल, जिसके द्वारा ब्रह्मा कुमारी आश्रमों की बड़ी सारी सृष्टि में सारे वर्ल्ड में स्थापना हुई, वही सोल प्रवेश करके अभी माँ का पार्ट बजाय रही है। कौन सी माँ? जिसे जगत अम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा का भी वो अर्थ है, ब्रह्म माँ बड़ी माँ, लेकिन वो दाढ़ी मूंछ वाला दिखाया जाता है, उसकी पूजा नहीं होती। वही दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा जब किसी नारी तन में प्रवेश करता है तो उसकी पूजा होती है। क्या कारण हुआ? कारण यही हुआ कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पुरुष जो दुनिया में आगे बढ़े हुए हैं, मान मर्तबा ज्यादा खींच करके लिया हुआ है, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। किसको आगे बढ़ाते हैं? कन्या माताओं को आगे बढ़ाते हैं, उनको ज्यादा संरक्षण परमात्मा की ओर से मिलता है। कब संरक्षण मिलता है? जब वो शक्तियां स्वीकार कर लेती हैं कि हम शिव की शक्ति हैं, डायरेक्ट शिव से हमारा कनेक्शन है और दुनिया में सबने हमको गिराया है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री ये कहती है कि मनुष्यों ने गिराया है और मनुष्यों का पिता जो परम पिता परमात्मा है वो सृष्टि पर आकर के शक्तियों को आगे बढ़ा, तो वो शक्तियां ही मातृशक्ति बनकर के उस परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता में सबसे आगे बढ़ती हैं, और उनमें से जो मुख्य शक्ति है जगदम्बा, जगत की अम्बा, वही ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश करके जगदम्बा के रूप में हम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा मेला किसका मनाया जाता है? जगदम्बा। आप देखिए अमरनाथ तो इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी होती है, कहां इकट्ठी होती है? वैष्णो देवी के मंदिर जो जगत अम्बा मानी जाती है, वहाँ भारी भीड़ भारी मेला लग जाता है। यादगार कहाँ की?
संगम,
संगम की यादगार है। और सुप्रीम सोल परमात्मा बाप ने जरूर कोई मनुष्य तन में प्रवेश किया है, जिसको संसार में शंकर कहा जाता है। ये शंकर वाली आत्मा कोई दूसरी आत्मा नहीं है, ये वही आत्मा है। 60 साल 65 साल पहले 36 में परमात्मा शिव जब आए थे तो पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है, यादगार बनी हुई है ड्रामा प्ले अनुसार बनी एंट्री। दुनिया का ऐसा बड़ा बरगद वृक्ष, वट वृक्ष, जिसका गीता में वर्णन है, ऊर्धम मूलम मदसाग अश्वत्थम महोरभ्यम, वो अश्वत्थ वृक्ष की यादगार वो बरगद वृक्ष बना हुआ है। मूल जड़ गायब हो चुकी है, माना मूल सनातन देवी देवता धर्म वो नष्ट हो चुका, प्रायः लोप हो गया, थोड़ा सा कहीं भारतवर्ष में नाम मात्र बचा हुआ, जहाँ पारिवारिक व्यवस्था बड़ी बड़ी रूप में अभी भी चल रही है, एक एक परिवार में 7-7, 100-100, 125-125 लोग पल रहे हैं, उनका एक मुखिया होता है, उस मुखिया के हाथ में सारी धर्म सत्ता राज सत्ता होती है, मुखिया की इशारे के बगैर कोई भी परिवार का सदस्य कोई कदम नहीं उठा सकता। वो सनातनी व्यवस्था आज भी है लेकिन बहुत लोप हुई है। ऐसी सनातनी व्यवस्था जो है वो परमात्मा इस सृष्टि पर घर घर में करके जाते हैं, मनुष्य उस पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ देते हैं, परमात्मा फिर आकर के जोड़ता है। वसुधैव कुटुंबकम, परमात्मा का नारा क्या है? सारी वसुधा ही, सारी सृष्टि ही तुम्हारा कुटुंब है, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ। परम पिता परमात्मा जिसको कहा जाता है वो परमात्मा बाप है, वो शंकर के रूप में संसार में। बच्चे हैं, कोई कंपनी बनती है दुनिया में तो कंपनी में पहले बाप का नाम आता है कि पहले बच्चे का नाम आ जाता है, एंड संस है, पहले तो बाप का नाम होता है ना, तो शिव पहले शंकर बाद में, शिव जो है वो कल्याणकारी का नाम है, शंकर संघारकारी का नाम है, जो सारे कचरे को सृष्टि से साफ कर देता है, सब अधर्मियों का विनाश कर देता है, जैसे गीता में लिखा हुआ है कि मैं आता हूँ किस लिए, विनाश आय दुष्कृतांस, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, तो धर्म की स्थापना करता है ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा का अपर रूप है जगदम्बा, जगदम्बा के द्वारा भारत माताओं के द्वारा वो आकर के स्वर्ग के गेट खुलवाता है, माताएं आगे बढ़ती हैं, स्वर्ग का गेट खोलने में निमित्त बनती है, क्यों पुरुष क्यों नहीं, कोई तो कारण होगा, भारत में ही भगवान क्यों आते हैं, विदेशों में क्यों नहीं, कोई तो कारण होगा, भारत माता क्यों कहा जाता है, यूरोप माता क्यों नहीं कहा जाता, और सब धर्म और सब धर्म खंड पिता परस्त क्यों है, गॉड फादर को क्यों ज्यादा मानते हैं, गॉड मदर को क्यों नहीं मानते, भारत में इतनी माता की मान्यता क्यों है, भारत माता कहा जाता है, भारत पिता तो कोई नहीं कहता, ये ठीक है कि माता है तो पीछे से जरूर शक्ति देने वाला पिता तो होगा ही, भारत में अहिवासी माताओं की मान्यता है या विधवा माताओं की मान्यता है, पूजा किसकी होती है, जब कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो अहिवासियों को आगे रखा जाता है, विधवाओं की उतनी मान्यता नहीं है, तो इससे साबित होता है कि भारत माता कोई विधवा तो नहीं रही होगी, तो वो भारत माता है जिनमें मुख्य शक्ति है जगदम्बा, जगत की अम्बा, वो जगदम्बा ब्रह्मा की दूसरा रूप अपर रूप वो और जगत पिता, जिसको शास्त्रों में कहा जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, ये सृष्टि के माता पिता है, ऐसे नहीं कि हिंदुओं में भी इनकी मान्यता है, दूसरे धर्मों में भी इनकी मान्यता है, एडम ईव की चिंत में मान्यता है कि सृष्टि के आदि पुरुष एडम ईव हुए, आदम हवा मुसलमानों में इनकी मान्यता है, क्या मान्यता है मुसलमानों में, क्या मान्यता है आदम हवा वो सृष्टि के पहले पहले पुरुष हुए, वो जन्नत में पहले पहले गए, फिर जन्नत से नीचे धकेल दिए गए, कारण तो कुछ भी रहा वो डिटेल की बात, तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे जैनी हो, जैनियों में भी आदिनाथ आदिनाथ नहीं माने जाते, वो सृष्टि के आदि पुरुष माने जाते, तो हर धर्म में उन आदि पुरुष की मान्यता है, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि कोई पहले आदि पुरुष कोई एक ही थे या कोई सृष्टि ही पुरानी थी और उस पुरानी सृष्टि में से किसी को निमित्त बना करके परमात्मा ने उनमें प्रवेश करके और नई सृष्टि की स्थापना की, मानी पुरानों में से ही कुछ विशेष आत्माओं को चुन करके परमात्मा नई सृष्टि की रचना करता है, ऐसे नहीं कोई नई सृष्टि आ जाती है अलग से, पुरानी सारी खत्म हो जाती है, नहीं दुनिया तो यही रहती है, दुनिया के मनुष्य भी यही रहते हैं, लेकिन उन मनुष्यों में से जो श्रेष्ठ सर्वोपरि पार्ट बजाने वाले हीरो हीरोइन हैं, उनको वो सुप्रीम सोल पहचानता है कि वो किस मनुष्य तन में है, उनको पहचान कर दो वो मुख्य विशेष आत्मा भारतीय परंपरा में रामकृति के रूप में मानी जाती है, विदेशों में उनको एडम ईव आदम हव्वा कहते हैं, तो वो रामकृष्ण की विशेष आत्मा जो इस सृष्टि रूपी रघुवंश की हीरो हीरोइन है, उनमें परमात्मा ने आज से 65 साल पहले प्रवेश किया, उनमें मां और बच्चों के सामने पहले प्रत्यक्ष हो गई, जिसे ब्रह्मा नाम दिया गया, ब्रह्मा बहुत प्रैक्टिकल में संसार में फैले हुए, कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये ब्राह्मण ब्राह्मणियों की उत्पत्ति नहीं हुई है ब्रह्मा के द्वारा, तो जरूर पिता भी होगा, जिसके द्वारा उस ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट में बीजारोपण ज्ञान का किया गया, वो रामवादी आत्मा थी, कहते हुए छुपा रुस्तम बाद में बोले, वो राम की सोल जो सत्य रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत में आकर के विशेष पाठ बजाती है, जिसे शंकर कहा जाता है, वो कृष्ण की सोल जो सत्य रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत में आकर के विशेष पाठ बजाती है, उसे ब्रह्मा कहा जाता है, ये ब्रह्मा मां हुई और वो जगत पिता शंकर हुए, पिता अपने को बाद में प्रत्यक्ष करता है, क्योंकि पिता को जो प्रत्यक्ष में कार्य करना है वो बच्चों को वर्षा देने का करना है, माँ को जन्म देने का, पालना देने का, प्यार देने का पार्ट बजाना है, तो उस दुनिया में जरूर परमात्मा बाप ने आकर के तुमेव माता च पिता तुमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है, तो सुप्रीम सोल ने जरूर कोई ऐसा पार्ट बजाया होगा जो दुनिया में किसी ने का बजाया हो, माता पिता के रूप में जरूर उसने ब्रह्मा के तन में आकर के वो माता का प्यार दिया, वो माता की पालना दी। आज भी ऐसा कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी पुराना नहीं होगा जो ये कहे कि ब्रह्मा बाबा से हम मिले तो ब्रह्मा बाबा से हमारी आंखें चार तो हुई, बाबा से हमने बात तो की लेकिन बाबा ने हमको दुख दिया, कोई हो तो बताओ, किसी नए का अनुभव सुनाया हुआ? पुराने पुराने ब्रह्मा कुमार तो बहुत है, ब्रह्मा कुमारियां हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं पुराने, लेकिन ये कोई अनुभव नहीं कहता, एक सेकंड भी मिला होगा बाबा से तो भी उसने ये अनुभूति की कि बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतना दुनिया में हमारी माँ ने भी, ओरिजिनल माँ ने भी इतना प्यार नहीं दिया। कारण ईश्वरी शक्ति, ईश्वर ही ऐसा माँ का रूप धारण कर सकता है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और ईश्वर ही ऐसा पिता का रूप धारण करता है। दुनिया में जो बच्चे मिलते हैं बच्चों को वो अल्पकाल के मिलते हैं, थोड़ा धन दे देंगे, थोड़ा मकान दे देंगे और क्या देंगे, बाप आकर के ऐसी दुनिया ही सच रूपी मकान ही ऐसा नया बनाया देता है जिसमें सुख ही सुख, अनेक जन्मों का सुख नुधा हुआ है, अनेक जन्मों की सुख शांति समाई हुई है, इसलिए उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परमात्मा का टाइटल है सदगति दाता, शांति दाता, गति दाता भी है और सदगति भी देता है, गति और सदगति, मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये वर्षा पाप की देन है, ये वर्षा मनुष्य सृष्टि पर और कोई नहीं दे सकता। मुक्ति का मतलब ये है दुख दर्दों से मुक्ति, हाथ जल रहा है दुख फील हो रहा है, एक हाथ जल रहा है दूसरे हाथ में कोई रसगुल्ला दे तो आदमी पहले क्या चाहेगा, पहले हाथ को निकालेगा दुख से या पहले रसगुल्ला लेके लपक के खा लेगा, क्या करेगा, पहले शांति चाहेगा कि पहले सुख चाहेगा, पहले तो मुक्ति चाहिए, सब दुखी है, दुखों से बंधे हुए हैं, दुख दर्दों से जीवन बंधा हुआ है, जीवन बंधन में है, उस बंधन से सब मुक्ति चाहते हैं। जब बुखार उतर जाए, शांति आ जाए तो लड्डू पीड़ा खाने की इच्छा होगी, भोजन खाने की इच्छा होगी, उसे कहते हैं सुख, सुख प्राप्त करना। तो परमात्मा पहले हर बच्चे को आकर के सृष्टि से मुक्ति देता है, दुख की दुनिया से मुक्ति का वरदान देता है, बाद में कुछ विशेष आत्माएं ऐसी हैं जिनको पहले सुख की सृष्टि में ले जाता है, क्योंकि नई सृष्टि में इतने ढेर सारे तो होंगे नहीं, नई दुनिया में तो बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी, कौन सी थोड़ी आत्माएं होंगी, हर धर्म में जिन आत्माओं ने अच्छे से अच्छा अच्छे से पार्ट बजाया है, कोई धर्म ऐसा है जिसमें बुरे और अच्छे न होते हो, ऐसा है जिसमें सब अच्छे ही अच्छे होते हो, ऐसा कोई धर्म है जिसमें सब बुरे ही बुरे होते हो, अच्छा कोई ना होता हो, हर धर्म में अच्छे भी होते हैं, हर धर्म में बुरे भी होते हैं, तो जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आचरण करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हर धर्म की हैं, उनको परमात्मा बाप आकर के एक एक करके चुनता है, चुन रहा है, अभी भी चुन रहा है, और चुन करके उनकी माला तैयार करता है। वो मालाएं एक तरह की नहीं है, हर धर्म में माला घुमाई जाती है, माला भी क्या होता है गोल गोल बनके, वो आत्माओं की तो यादगार है, बिंदु बिंदु आत्माओं की यादगार है, बिंदु का बड़ा रूप शालिग्राम बनता है, माला का मणका बनता है, बिंदु का ही रूप शिवलिंग बनता है, पूजा करने के लिए शिव को बड़ा लिंग बना दिया है, बिंदु का बड़ा रूप शिवलिंग, ऐसे ही पूजा करने के लिए शालिग्राम बना दिया, ऐसे ही माला का मणका बना दिया है, आत्मा की यादगार। तो सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर धर्म से चुनी हुई विशेष आत्माओं का जो संगठन परमात्मा ने तैयार किया वो माला, माला रूपी संगठन कहा गया, जिन माला के मणकों को, आत्मा रूपी मणकों को दुनिया के हर धर्म की आत्मा आदमी स्मरण 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 कर, कोई गुरु से जाके पूछो भाई तुम माला के घुमाते हो, कोई तो अक्के बक्के हो जाएंगे, अरे ये क्या, ये कोई प्रश्न है तुम्हारा, माला क्यों घुमाते हो, सही जवाब तो जानते नहीं है। परमात्मा बाप आकर के बताते हैं बच्चे मैं तो विशेष आत्माओं का संगठन तैयार करता हूँ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो संगठन है वो है 9-8-9 आत्माओं जो नवग्रह के रूप में हमारे भारतवर्ष में पूजा जाता है, कथा होगी, भागवत होगी, शादी होगा, यज्ञ पवित्र होगा, तो नवग्रह जरूर मनाएंगे, नवग्रह का पूजन करेंगे। अब उनका पूजन होता है नवग्रह की हर जगह पूजा होती है तो कुछ विशेष आत्माएं होंगी ना, वो तो उन जड़ ग्रहों को समझ लेते हैं, शुक्र तारा को, बृहस्पति तारा को, सूर्य को, चंद्र को, अरे वो तो रोशनी देने वाले जड़ लाइट के गोले हैं, वो कुछ चैतन्य आत्मा थोड़े ही। ज्यादा ताकत किसमें होती है? चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है, जड़ में ज्यादा ताकत होती है? चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है। तो ये धरती के सितारे यहाँ इस धरती पर मौजूद हैं। इन धरती के सितारों को परमात्मा सिलेक्ट करके संसार के सामने प्रत्यक्ष कर रहे हैं। देखो ये है नवरत्न, अष्टदेव, नौ विशेष आत्माएं संसार के सामने प्रत्यक्ष करता है। ये है फर्स्ट क्लास से भी ऊंची माला, फिर फर्स्ट क्लास माला आती है 108 की, उसमें वो 8 नौ जुड़े हुए हैं। तो वो जो 100 विशेष आत्माएं हैं उनका भी चयन परमात्मा करता है। जो जन्म जन्मांतर राजा ही पद पाते हैं, राजाएं बनते हैं, तो दुनिया में इंजीनियर के फिर कॉलेज खुले हुए हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेज खुले हैं, डॉक्टरी के कॉलेज खुले हुए हैं, मास्टरी के कॉलेज खुले हुए हैं, इनके तो कॉलेज खुले हैं, लेकिन दुनिया में इतने बड़े बड़े राजाएं, छोटे छोटे राजाएं हुए, उनको राजा बनने की क्वालिटी किसने सिखाई? राजा बनने की जो कंट्रोलिंग पावर उनके अंदर आ गई वो किसने दी? कब दी? किसी ने तो दी होगी, कोई टाइम तो हुआ होगा जब राजयोग सिखाकर परमात्मा ने राजाएं दी होगी जन्म जन्मांतर की आत्माओं को। तो वो यही दी है, इस समय परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आए हुए हैं, आकर के हम बच्चों को राजयोग सिखा करके वो जन्म जन्मांतर की राजाई की पावर हम आत्माओं में भर रहे। अब जो पढ़ाई पढ़ेगा वो पाएगा, सिर्फ पढ़ाई पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, और अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण भी करना है। नहीं तो अगर पढ़ तो लिया, दूसरों को पढ़ा भी दिया, मान मर्तबा भी ले लिया, लेकिन अपने जीवन में अगर धारण नहीं किया तो रावण का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण, हम ब्राह्मणों की दुनिया में भी बहुत से सुनते हैं, सुनाते हैं, बड़े ऊंचे कहे जाते हैं, बड़ी महिमा ले रहे हैं, लेकिन अंदर से धारणा न होने के कारण उनका रावण का रूप संसार में प्रत्यक्ष हो जाए। तो पहली बात है ज्ञान को सुनना रेगुलरली, क्या रेगुलर सुनना, अटेंशन देकर के पढ़ाई पढ़ना कि ईश्वर की पढ़ाई है, ऊंचे से ऊंचा गुरु टीचर हमको पढ़ाने के लिए सृष्टि पर आया हुआ है, वो पढ़ाई। उस पढ़ाई में पहली पढ़ाई ये पढ़ाई जाती है कि तुम आत्मा कौन और तुम्हारा बाप कौन। ये बात बताने के लिए 7 दिन पहले बेसिक नॉलेज दी जाती है, फिर 7 दिन एडवांस नॉलेज दी जाती है, तब बुद्धि में बैठता है कि सृष्टि पर ये जो मनुष्य के रूप में मूर्तियां दिखाई पड़ रही है इनमें कौन जगदम्बा है और कौन जगत पिता है। नहीं तो कोई सांप बिच्छू टिंडन धारण किए हुए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सांप लगाए हुए हो गले में, बाहों में, कमर में, थप सर के ऊपर, और वो बाजीगर बन करके हमारे सामने आ जाए। वो तो एक प्रतीकात्मक चित्र है, कवियों की भाषा है, कवियों का चित्रण है, उस चित्रण को मनुष्य मात्र जो है नहीं समझ सका। कौन समझ लिया ऐसे ही हुए होंगे, दशर का कोई रावण ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं। जो भी चित्र है उनमें चरित्र की यादगार भरी हुई है, जो भी नाम है उसमें उनके काम समाये हुए हैं। युधिष्ठिर जरूर संसार रूपी जंगल में, संसार रूपी मैदान में जो युद्ध हुआ है उस युद्ध में जो स्थिर रहा, कभी हिला डुला नहीं, असत्य जिसने भाषण नहीं किया, असत्य का रास्ता नहीं लिया, सत्य का ही हमेशा पक्ष लिया, वो युद्ध हुआ। दुर्योधन ने सदैव दुष्ट युद्ध किया, जो युद्ध करना चाहिए ज्ञान का वो ज्ञान का युद्ध नहीं किया, मारा राड़ी कर दी। तो परमात्मा कोई मारा दाढ़ी का युद्ध करने के लिए, कराने के लिए थोड़ा ही आता है। आज की दुनिया की जो महात्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, तो वो भी किसी को मारना करना सिखाते हैं क्या? सिखाते हैं नहीं, वो भी नहीं सिखाते। तो परमात्मा आकर ये कैसे सिखाएगा कि तुम बाहुबल दिखाओ, है मार काट करो? परमात्मा तो ज्ञान, ज्ञान की तलवार चलाना सिखाता है। ये ज्ञान की तलवार से जो पाप है वो मारे जाते हैं, इसलिए परमात्मा बाप का कहना है कि पापी से घृणा मत करो, उसके पाप से घृणा करो, बदला मत लो, क्या करो उसको बदल के दिखाओ। बड़े से बड़ा आसुर हो उसके लिए भी हमारे अंदर ये स्टेमिना होना चाहिए कि परमात्मा बाप हमारे साथ आया हुआ है, सारी सृष्टि का परिवर्तन करने वाला आया हुआ है, इस असुर का परिवर्तन नहीं करेगा। कैसी भी पत्थर बुद्धि आत्मा क्यों, कैसी भी जड़ बुद्धि, झाड़ की तरह जड़ बुद्धि क्यों न हो, उसको भी परमात्मा परिवर्तन करने के लिए आया। हम बच्चों को निमित्त बना देते हैं, तो इतना बड़ा कार्य हो रहा है, उस कार्य में माया का प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, माया का अपोजिशन जरूर होगा। माया कोई दूसरी चीज भी नहीं है, हमारे अंदर की अपनी कमजोरियां हैं, तो हम एक परमात्मा बाप की मत पर नहीं चल पाते। जो हमारा इस सृष्टि में सबसे बड़े से बड़ा प्रियतम है, क्या एक तो कहते हैं प्रिय, एक कहते हैं इससे ज्यादा प्यारा, और एक कहते हैं सबसे ज्यादा प्यारा, उसको कहते हैं प्रियतम। तो प्रियतम कौन हुआ? इस सृष्टि पर कोई प्रियतम नहीं है, सब एक दूसरे को धोखा देने वाले हैं। सभी सृष्टि ऐसी बन जाएगी, दिन प्रतिदिन हालत ऐसे खराब होते जा रहे हैं कि न कोई किसी का बाप बाप रहेगा, न कोई बच्चा रहेगा, न पत्नी रहेगी, न पति रहेगा, साथ एक दूसरे को धोखा देने लग पड़े। अभी भी दे रहे हैं, अभी भी एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, कितना भी प्रगाढ़ संबंध क्यों न हो, वो भी टूटता जा रहा है। आज संबंध जुड़ता है, कल टूट जाता है। अभी वो सृष्टि की वो तामसी हालत हो चुकी, ऐसी तामसी सृष्टि को बदलने के लिए परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। वो आकर के बच्चों को बता रहा है, बच्चे अभी एटमिक एनर्जी तैयार हो चुकी, हर हर बम बम का प्रैक्टिकल नारा इस सृष्टि पर लगने वाला है। आज से 7 साल पहले ऐसी घातक शक्ति तैयार नहीं हुई थी, अब तैयार हुई, मनुष्यों के हाथ में उसका विस्फोट है, उन्होंने ही निर्माण किया है। लेकिन प्रेरणा किसने दी? प्रेरणा देने वाला कोई तो होगा, अगर प्रेरणा देने वाला ना होता तो आज से पहले भी वो शक्ति तैयार हो जानी चाहिए, एटम बम तैयार हो जानी चाहिए। नहीं, आज से 7 साल पहले तो नाम निशान भी नहीं था। सन 45 में द्वितीय विश्व युद्ध में 20-20 मेगावाट की बम्बियां बनी थी, जिन्होंने जापान के 2 शहरों को नेस्त नाबूद कर दिया, और आज तो उसके मुकाबले में हजारों हजार वाट के एटमिक एनर्जी बनी हुई पड़ी है, हाइड्रोजन बम, एटम बम, कीटाणु बम। ये सृष्टि तो बालू के ऊपर खड़ी हुई है, जैसे बालू के ऊपर किला बनाया जाता है और नदी का पानी आता है और किला फोड़ देता है, तो ऐसे ही बालू के ढेर पर खड़ी हुई, ये बालू कहो या ये बारूद कहो, इसके ढेर पर दुनिया खड़ी हुई है। परमात्मा बाप शंकर के द्वारा एक प्रेरणा का सूत्र छोड़ेगा और ये एटमिक एनर्जी फटने लग पड़ेगी। कब तक रुकी हुई है? जब तक वो मालाएं तैयार नहीं होती है, जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नई सृष्टि का संगठन तैयार नहीं होता है। हम ब्राह्मण बच्चों, ऐसा संगठन एक बार तैयार हो गया बस विनाश की विनिश शुरू, हर हर बम बम का प्रैक्टिकल नारा शुरू हो जाएगा, फिर पुरुषार्थ करने का मार्ग नहीं रहेगा। अभी 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 पुरुषार्थ करने का मार्जिन है, फिर नहीं रहेगा, फिर क्या होगा? तो मारामारी चारों तरफ होगी, धुआंधार चारों तरफ होगा, तो उस स्टेज में तो कोई ज्ञान भी नहीं ले सकेगा। अभी तो शांति के पीरियड में पढ़ाई पढ़ी जा सकती है, जैसे पहले पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे? गांव शहर का वातावरण छोड़ के गुरुकुल में जंगल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो शांति में पढ़ाई होती है। जब दुनिया में लड़ाई शुरू हो जाएगी, अशांति का वातावरण हो जाएगा, उस समय कोई पढ़ाई पढ़ नहीं सकेगा, सबको अपने बंद होकर के अपने अपने घरों में बैठना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा भारतवर्ष में ही नहीं होगा, दुनिया के सभी देशों में वही माशाल्लाह लागू होगा, तब हालत बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए वो सूर्य उदय होने से पहले, ज्ञान सूर्य परमात्मा इस सृष्टि पर उदय हो उससे पहले ही पुरुषार्थ करना, इसको कहते हैं अमृत वेला। अभी ज्ञान सूर्य गुप्तगारी कर रहा है, पांडवों को भी गुप्त कहा जाता है, जो पांडव गुप्त होकर के घूमते थे, कितने साल घूमे? कौन तो 14 साल लिख दिया है, तो गुप्तवास किया पांडवों ने, तो 14 साल कोई निश्चित टाइम हुआ होगा ना, कौन सा टाइम हुआ होगा? ब्रह्मा की आयु 100 साल कही जाती है। सन 36 में परमात्मा शिव ने ब्रह्मा में प्रवेश किया, तो सन 36 से लेकर के सन 36-46 के बीच जो प्रवेशता हुई है उसमें वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश होता है, 40 साल दूसरे जोड़ दिए तो 89 आता है, 89 के बाद से लेकर के अब 14 साल गुप्तवास के, समझ लें पांडवों ने लंबे समय तक गुप्तवास किया, दुनिया नहीं जान सकी उन पांडवों को, वो गुप्त रूप में अपना कार्य करते रहे, परमात्मा से पढ़ाई पढ़ते रहे। सबसे लंबे समय तक कहां गुप्तवास किया, वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। राजा द्रौपदी की राजधानी है, द्रौपदी का जन्म हुआ वहां से, नाम रख दिया द्रौपदी, जिसका पद ध्रुव है, जिस पद को कोई कितना भी हिलाए लेकिन सत्य की नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, वो ऐसी सत्य की नैया है। तो उसका पद तो ध्रुव है, उसे कोई हिला नहीं सकता। वो ध्रुव पति जो है, राजा ध्रुव पद की लड़की है, कन्या है, जैसे जगदम्बा ब्रह्मा की बच्ची मानी जाती है शास्त्रों। तो ये जगत पिता और जगदम्बा का श्रेष्ठ कार्य जो है सृष्टि पर चल रहा है, गुप्त रूप में चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप में समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई ज्ञानी तू आत्मा, जो शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञानी तू आत्मा मुझे वैसी स्त्री है, बैठ करके अपना टाइम दे तो समझ में आ सकता है। कोई बुद्धि ही क्यों न हो, कोई लूला लगड़ा ही क्यों न हो, कोई अंधाई ही क्यों न हो, कोई गरीब से गरीब सड़क का बेगमंगा ही क्यों न हो, वो भी इस ज्ञान को समझ सकता है। इस ज्ञान का नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। ज्ञान भी सहज है और योग भी सहज है। अब नहीं लिया तो कब लेंगे, अभी तो घड़ी घड़ी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। इराक का युद्ध शुरू हुआ तो सब थर्राने लगे, अभी हिंदुस्तान में कारीगर का युद्ध शुरू हुआ, एक कारीगर, यहाँ तो सैकड़ों कारीगर घुसे हुए पड़े हैं, छोटी जी को पता ही नहीं है, एक कारीगर की बात नहीं है। तो ये स्थिति कभी भी आ सकती है। भारतवर्ष में जितनी जातियां हैं और जातियों के आधार पर जितना विद्वेष है, इतना दुनिया के किसी देश में नहीं है। भारतवर्ष में जितने धर्म पनप रहे हैं और धर्मों की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में भारतवर्ष में जितनी है, उतना परसेंटेज और किसी भी देश में नहीं। दिल्ली के तख्ते पर हर धर्म ने राज्य किया है, दुनिया में कोई ऐसा दूसरा शहर नहीं है जिसमें हर धर्म ने राज्य किया हो। तो यहाँ भिन्नता बहुत है और उस भिन्नता के आधार पर अंदर अंदर आग सुलग रही है, मारामारी के लिए तैयार बैठे हैं। कौन रुक रहा है, वो परमात्मा बाप ही सृष्टि पर इस समय रोक रहा है कि जब तक स्थापना नहीं हो जाएगी तब तक विनाश विनाश शुरू हो जाए। जब तक नया मकान का दो चार कमरा न बन जाए, एक दो कमरा तो बने, तब बड़ी बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग है वो तोड़ना शुरू।